ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌಡ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌಡ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌಡ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಆಜ್ ಹಮ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಸೇ ಪಡೆಂಗೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಜ್ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಆಜ್ ಸೇ ಜೋ ಗೌಡಿಯಾ ವೈಷ್ಣವ ಹೈ ವೋ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ಕೆ ದಿನ ಸೇ ಚಂದನ್ ಯಾತ್ರಾ ಮನಾತೆ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ ಚಂದನ್ ಯಾತ್ರಾ ಕಿ ಜೋ ಶುರುವಾತ್ ಹೈ ವೋ ಶ್ರೀಪಾದ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಸೇ ಹುಯಿ ಥಿ तो उनके चरित्र का वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत ही विस्तार से दिया है और हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से ये जो चंदन यात्रा है शुरू हुई और क्यों हम ये चंदन भगवान को इस दिनों में अर्पित करते हैं। तो ये मध्य लीला में इसका वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज ने किया है चौथे अध्याय में और श्लोक भी बोर्ड में है प्यार बंगाली जिसका हम उच्चारण करेंगे तो आप मेरे पीछे दोहराई है। गोपाल कहे पुरिया मार ताप नाही जाए गोपाल कहे पुरिया मार ताप नाही जाए मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए गोपाल कहे पुरिया मार ताप नाही जाए गोपाल कहे पुरिया मार ताप नाही जाए मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए आप उच्चारण करिए। गोपाल कहे पुरिया मार ताप नहीं जाए मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए गोपाल कहे पुरी अमार ताप नाही जाए मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के ये अंग्रेजी भाषा में है मैं उसको पढ़ता हूँ फिर हम सुनेंगे। In his dream, Madhavendra Puri saw Gopal, who said, "My bodily temperature still has not decreased. Please bring sandalwood from the Malaya province and smear the pulp over my body to cool me." Tatparya. The deity of Gopal had been buried within the jungle for many years, and although he was installed and was offered thousands of pots of water, he still felt very hot. He therefore asked Madhavendra Puri to bring sandalwood from the Malaya province. sandalwood produce in Malaya is very popular. That province is situated on the western ghat and the hill Nilagiri is sometimes known as Malaya Hill. The word Malaya Ja is used to indicate the sandalwood produced in Malaya province. Sometimes the word Malaya refers to the modern country of Malaysia. Formerly this country also produced sandalwood, but now they have found it profitable to produce rubber trees. Although the Vedic culture was once prevalent in Malaysia, now all the inhabitants are Muslims. The Vedic culture is now lost in Malaysia, Java and Indonesia. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Sakshurun Militam Ena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Mena Bhutale Svayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamcha Sri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Sham E Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priyam Vansha Kalpatarubhecha Kripa Sindhuve Evacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Gopal kahe puri amar tapana hi jai Malay ja chandana lepa tave se judai तो आज अक्षय तृतीया है और जो भौतिकवादी लोग हैं वो भी अक्षय तृतीया का पालन करते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं, और जो गौड़िया वैष्णव हैं वो अलग रूप से इसको मनाते हैं। तो जो भौतिकवादी लोग हैं अक्षय तृतीया को क्या करते हैं, कुछ धार्मिक कार्य करते हैं आज के दिन, और वो सोचते हैं कि उसका रिजल्ट हमेशा हमेशा हमें मिलेगा। तो इसलिए ये अक्षय है जिसका क्षय नहीं होता। तो इसलिए कई सारे धार्मिक कार्यों में, पुण्य कार्यों में लोग आज के दिन अपने आप को लगाते हैं बाहर। लेकिन हम भी ऐसे ही कार्यों में हैं, लेकिन परम भगवान की सेवा में आज के दिन पूरी तरह से लगते हैं, और उनकी जो सेवा की भावना है उसकी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के जीवन से। तो ये जो अक्षय तृतीया दिन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे शास्त्रों में बहुत ही अधिक, विशेष रूप से चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत में इस बात का वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरित हुए थे कृष्ण का जो निर्मल प्रेम है वो प्रदान करने के लिए। और वो प्रेम पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थाना स्थान। चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति पात्र है, क्वालिफाइड है, ये व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण भक्ति है वो हर एक व्यक्ति को प्रदान की। जे जे जहाँ पाए तहाँ करी दान, कि जो जहाँ मिलता था उसे श्री चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण प्रेम को बांटते थे और बांटने के लिए आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कई लीलाएं नवद्वीप में प्रकट की, और विशेष रूप से उनकी जो विद्या रस का आस्वादन करने की जो लीलाएं हैं वो उन्होंने वहाँ प्रकट की। और फिर जब वो गया जाते हैं और गया से वापस आते हैं और श्रीपाद ईश्वरपुरी से वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो कृष्ण भक्ति का वो प्रचार करने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु, और खुद ही कृष्ण नाम में मग्न हो जाते हैं, कृष्ण नाम के उच्चारण में, और जो भी मिलता था उसे भी कृष्ण नाम प्रदान करते थे। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आज्ञा से या अपने आचरण से ये शिक्षा दी कि किस प्रकार से कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना चाहिए या कृष्ण नाम का आस्वादन करना चाहिए और किस प्रकार से कृष्ण नाम का वितरण करना चाहिए दूसरों को। तो ये चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी वदान्यता है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर 24 साल की अवस्था में वो संन्यास ग्रहण करते हैं। उनके पीछे उनकी माता थी सची माता, और उनकी युवा पत्नी थी विष्णुप्रिया। तो चैतन्य महाप्रभु 24 साल की आयु में संन्यास ग्रहण करते हैं कटवा में जाकर केशव भारती से, और संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सची माता के आज्ञा से जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु कटवा से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे पैदल, मीन्स बंगाल से ओडिशा की ओर, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु का जो रूट है जिसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में किया है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कौन कौन से स्थानों से गए, तो जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु जाते थे उनके साथ और 3 या 4 भक्त थे, चंद्र मुकुंद थे, नित्यानंद प्रभु थे, तो ये सब भक्त जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु अभी सन्यासी थे, तो ये रास्ते में किसी भी जगह रहते थे, कभी उनको किसी मंदिर में रह जाते थे, कभी रास्ते के किनारे रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु अपने उत्तरी को फैलाकर लोगों से भिक्षा मांगते थे, राइस और कई प्रकार के जो ग्रेन्स हैं, और फिर उसी को ये लोग कुकिंग करके खाते थे भगवान को अर्पित करके, और फिर आगे चलते रहते। तो इस प्रकार से उनका जो जर्नी है जगन्नाथपुरी की ओर जा रहा था, जगन्नाथपुरी की ओर चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ मुख्य संगियों के साथ चल पड़े। तो रास्ते में जब वो ओडिशा आए, ओडिशा और बंगाल का जो बॉर्डर है उसको पार करने के बाद जाजपुर और उसके पास बालेश्वर उस स्थान में आए, तो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है। तो चैतन्य महाप्रभु जब बालेश्वर में आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ बालेश्वर में गोपीनाथ मंदिर है, बालेश्वर में एक स्थान है रेमुना नाम का स्थान है, रेमुना नाम का एक गांव है, और रेमुना में कृष्णदास कविराज कहते हैं रेमुना ते गोपीनाथ परम मोहन भक्ति करी कैल प्रभु तार दर्शन, कि रेमुना में गोपीनाथ है, गोपीनाथ के विग्रह है राधा गोपीनाथ, और जो बहुत ही अधिक मोहन है, बहुत ही अधिक सुंदर है, और भक्ति पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ गोपीनाथ का दर्शन किया, और जैसे गोपीनाथ का दर्शन किया और वो प्रणाम कर रहे थे गोपीनाथ के सामने, जैसे मंदिर में आए गोपीनाथ को देखा चैतन्य महाप्रभु ने जैसे प्रणाम किया, तो गोपीनाथ के सर के ऊपर जो मुकुट था पुष्प मुकुट भगवान ने धारण किया था वो गिर के चैतन्य महाप्रभु के सर के ऊपर पड़ता है, गिर जाता है। तो इस प्रकार से गोपीनाथ ये इस प्रकार की लीला प्रकट करते हैं, और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने संगियों के साथ गोपीनाथ के सामने बहुत नृत्य किया, बहुत ही कीर्तन किया, हरिनाम का उच्चारण किया। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ का दर्शन किया, उनके सामने नृत्य किया, उनके सामने कीर्तन किया भावावेश में आकर अपने भक्तों के साथ, तब वो जब एक जगह बैठे इस सब कार्यकलापों के बाद, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने उन भक्तों को गोपीनाथ की महिमा का वर्णन किया कि ये गोपीनाथ विग्रह की महिमा क्या है, क्योंकि गोपीनाथ को क्या कहा जाता है, खीर छोरा गोपीनाथ, वो जो विग्रह है वहाँ, तो उनका नाम है खीर छोर गोपीनाथ, रेमुना नाम के गाँव में। आज भी आप जाते हैं ओडिशा तो बालेश्वर जिले में ये छोटा सा गांव पड़ता है, और आज के दिन तो वहां बहुत ही बड़ा उत्सव शुरू हो रहा होगा। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ के सामने अपने भक्तों के साथ बैठे और गोपीनाथ की जो दिव्यता है, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका वर्णन करने लगे अपने मुख से, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को और उनके और भी जो संगीत है और भी जो भक्त ग्रंथ है उनको अपने मुख से वर्णन करने लगे कि ये गोपीनाथ की महानता क्या है, क्यों इनका नाम खीरचोर गोपीनाथ पड़ा है। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात का वर्णन करते हैं और अपने मुख से ही अपने ही भक्त का गुणगान करते हैं। तो भगवान को बहुत अधिक आनंद होता है जब उनके भक्त के बारे में भगवान बोलने लगते हैं। जैसे हमें आनंद होता है, हम अपने खुद के बारे में सुनना चाहते हैं, खुद का गुणगान सुनना चाहते हैं, लेकिन भगवान अपने गुणगान से भी ज़्यादा अपने भक्तों का गुणगान सुनना चाहते हैं और भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों का गुणगान करते थे तो उनके जो मुख हैं वो पांच पांच मुख हो जाते थे। मतलब इतना आनंद लेते थे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त के बारे में बोलने के लिए, भक्त का गुणगान करने के लिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो भक्त के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने शिक्षा दी कि किस प्रकार से एक भक्त का आचरण होना चाहिए और किस प्रकार से एक भक्त को भगवान की जो भक्ति है वो करनी चाहिए। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ये भी सिखाते हैं कि एक भक्त को कैसे दूसरे भक्त का गुणगान करना चाहिए। हम तो गुणगान नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु जब हरि श्रील माधवेंद्रपुरी के बारे में वर्णन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी से सुना है। तो शिष्य का मतलब क्या है? जो सुनता है, जो सुनता नहीं है वो शिष्य नहीं है। वो नाम के लिए शिष्य हो सकता है लेकिन जो सुनता नहीं है गुरु के आज्ञाओं को और भगवान के दिव्य चरित्र को नहीं सुनता तो वो शिष्य नहीं है। तो शिष्य शब्द का मतलब ही है कि जो शासन में रहता है, जिसके ऊपर शासन है, जो स्वतंत्र नहीं है। और किस चीज का शासन है? गुरु और शास्त्र का जिसके ऊपर शासन है वो शिष्य है और उसी के अनुसार वो साधना करता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने मेरे गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी से सुना है, श्रील माधवेंद्रपुरी के बारे में, जो गोपीनाथ को इतने प्रिय सेवक थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु अपने जो महान भक्त है माधवेंद्रपुरी के बारे में बोलने लगे। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं माधवेंद्रपुरी का। तो वो कहते हैं माधवपुरी र प्रेम अकत्य कथान मेघ दर्शन मूर्छा हरि प्रेक्षण। कि माधवेंद्रपुरी र प्रेम अकत्य कथन, कि जो माधवेंद्रपुरी नाम के जो भक्त हुए हैं उनका जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो अकत्य है, मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते। इतना प्रगाढ़ प्रेम और अनुराग कृष्ण के लिए है उनका कि मेघ दर्शन मूर्छा हय तत्क्षण। कि माधवेंद्रपुरी जब रास्ते से चलते थे और आकाश में पानी से युक्त जल से भरे हुए मेघ को देखते थे, बादलों को देखते थे, तो जैसे बादल पानी से भरते हैं तो वो श्यामल दिखाई देते हैं। तो माधवेंद्रपुरी ऐसे बादलों को देखते थे तो उनको कृष्ण का स्मरण हो आता था कि कृष्ण का वर्ण कैसे है, श्यामल है, और वो मूर्छित हो जाते थे। तो कहते कि इस प्रकार का प्रेम माधवेंद्रपुरी के हृदय में कृष्ण के लिए था। क्योंकि भक्त का स्वभाव या भक्त का गुण क्या है? जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। वो जहां जहां देखता है उसको कृष्ण ही स्फुरित होते हैं, कृष्ण से संबंधित चीजों को देखता है। तो ये भक्त का महान गुण होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे जो माधवेंद्रपुरी थे उनका वर्णन करते हैं कि माधवेंद्रपुरी जो परम विरक्त सन्यासी थे, वैष्णव थे, जो मध्वाचार्य के संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी लक्ष्मीपति तीर्थ से, और माधवेंद्रपुरी भ्रमण करते थे पूरे भारत में कई भगवान के लीला स्थलियों या तीर्थ स्थानों की भ्रमण करते थे। तो भ्रमण करते करते जब वो दक्षिण भारत में थे तो वो नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं और नित्यानंद प्रभु भी बहुत आनंदित हो जाते हैं माधवेंद्रपुरी को देखकर। और उसके बाद माधवेंद्रपुरी ने कई स्थानों का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद माधवेंद्रपुरी वृंदावन आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन करते हैं और इस जो चंदन यात्रा जो आज से शुरू हो रही है सब जगह उसका महिमा बताते हैं। तो माधवेंद्रपुरी के बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए और वृंदावन के कई वनों में भ्रमण करते करते जब गोवर्धन गए, गोवर्धन जाने के बाद उन्होंने जब गोवर्धन की परिक्रमा की तो गोवर्धन परिक्रमा करते करते माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड में आते हैं। गोविंद कुंड में आकर, तो गोविंद कुंड क्या है, आज भी आप जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा में तो आप गोविंद कुंड का दर्शन कर सकते हैं। हाँ, एक कुंड है जिसमें जल भी है और बिल्कुल गोवर्धन के तलहटी में है। तो गोविंद कुंड वो स्थान है जहाँ जब इंद्र ने ब्रजवासियों के ऊपर बहुत ही घनघोर वर्षा की थी, बारिश की, तो भगवान ने गिरिराज को धारण किया था अपने उंगली पर 7 दिन के लिए, 7 रात तक, जब कृष्ण 7 साल के थे। और फिर जब इंद्र समझ गया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है जिसने ये गिरिराज को उठाया है, और वो जान गया कि ये तो साक्षात मेरे प्रभु हैं, कृष्ण हैं, तो फिर बाद में कि मैंने कृष्ण के प्रति या भगवान के प्रति इस प्रकार का अपराध किया है, मैंने उनको सामान्य समझा है। तो बाद में जब कृष्ण एक दिन अपने ग्वाल सखाओं के साथ वहाँ गौओं की रक्षा कर रहे थे या बछड़ों को चरा रहे थे उस स्थान में, तो इंद्र वहाँ आ जाते हैं अपने ऐरावत हाथी के साथ। और इंद्र उस समय भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं कई सारे जल से और दूध से, कई सारे चीज़ों से। तो वो जो चीज़ें, जिन चीज़ों से अभिषेक किया, वो सारा जल एकत्रित हुआ और वो गोविंद कुंड बना। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो वो स्थान गोविंद कुंड है जहाँ श्रीपाद माधवेंद्रपुरी बैठे और एक पेड़ के नीचे, तो उनका स्वभाव था, जहाँ कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उनका स्वभाव क्या था, आयाचिक वृत्ति। तो आयाचिक वृत्ति का मतलब है, या तो अजागर वृत्ति, कि कोई चीज अपने लिए नहीं मांगना, खुद के भोजन, वो ऐसे थे कि खुद का भोजन भी खाने के लिए भी वो नहीं मांगते थे। वो पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर थे, कृष्ण यदि मेरे लिए भेजेंगे तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो राह देखते थे, वो हर समय कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लीलाओं में डूबे रहते थे, मग्न रहते थे, ऐसे थे माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जब गोविंद कुंड में आए तो वे एक वृक्ष के नीचे बैठे और भगवान के नामों का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माधवेंद्रपुरी भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे तो उसी समय एक बालक आता है, एक सुंदर सा बालक, छोटा सा, और वो माधवेंद्रपुरी को कहता है कि आप अपने साथ, वो दूध लाता है एक बर्तन में या मटके में, और वो कहता है कि आप दूध ग्रहण करो, क्योंकि ये जो स्थान है, ये जो गांव है, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, कोई मांगता है तो हम उसको प्रदान करते हैं चीज़ें, और जो नहीं स्वयं मांगता तो हम स्वयं उसके लिए ये चीज़ें ले आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं यहाँ बैठा हूँ एकांत में अकेले? तो उस बालक ने कहा कि अभी अभी तो गोविंद कुंड में कुछ स्त्रियाँ आई थी जल भरने के लिए, उन स्त्रियों ने मुझे कहा कि एक बाबा जी बैठे हैं जिन्होंने किसी चीज़ का आहार नहीं किया है, कोई चीज़ स्वीकार नहीं की है, तो उन्होंने ये जो दूध है मेरे पास भेजा है आपके लिए। तो माधवेंद्रपुरी ये चीज़ को स्वीकार करते उस दूध को, और इस बालक ने कहा कि आप उस दूध को स्वीकार करो और दूध पीने के बाद ये जो बर्तन है या जो मटका है वो साइड में रख देना और मैं आके फिर उसे ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से वो जो बालक चला गया उस स्थान से और माधवेंद्रपुरी को बहुत हर्ष हुआ। माधवेंद्रपुरी ने उस दूध का पान किया और वो सोचने लगे उस बालक के बारे में कि ये कौन बालक है। उन्होंने पूछा भी था तुम कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसी गांव से हूँ। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी ने उस दूध का पान किया और माधवेंद्रपुरी वहाँ अचानक थोड़ा सो गए। तो सोने के बाद अचानक उनको सपना आता है जिसमें कृष्ण उनके सपने में आते हैं और कृष्ण कौन से रूप में थे, उस बालक के रूप में ही जो बालक आया था उनको दूध देने। तो वही बालक माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ता है और उनको उठाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें उस स्थान दिखाता हूं जहां मैं कई सालों से मिट्टी के नीचे या झाड़ियों के बीच में उसके अंदर हूं। तो वो बालक कहता है श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारे ब्रजे रस्तापित आमी यहां अधिकारे। कहते कि मेरा नाम क्या है, गोपाल है, श्री गोपाल। गोपाल मीन कि जो गौओं के पालन करते हैं वो है गोपाल। और ब्रजे रस्तापित आमी यहां अधिकारे, हाँ तो गोपाल या कृष्ण एक विग्रह के रूप में थे, मूर्ति के रूप में थे। तो उस बालक ने सपने में आके कहा कि मेरा नाम गोपाल है और मेरी जो स्थापना है वो वज्रनाद ने की थी। भगवान के पुत्र थे अनिरुद्ध प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाद। तो भगवान ने सपने में आके कहा कि मेरे इस विग्रह की स्थापना वज्रनाद ने की थी और जब उस समय मेरी सेवा अर्चना चल रही थी लेकिन अचानक यवनों ने मुस्लिमों ने आक्रमण किया तो पुजारी ने उनके भय से मुझे इस झाड़ियों के बीच डाल दिया है। तो आप मुझे क्या करो, मैं आपकी तो राह देख रहा था कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और कब मुझे इस स्थान से बाहर निकालेंगे। तो कृष्ण स्वयं उनको कह रहे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान को अपने भक्त कितने प्रिय करते हैं। आप भगवान उस सेवा के लिए राह देखते हैं, तो भक्त को सेवा के लिए भगवान के बहुत ये होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। तो जैसे माधवेंद्रपुरी को इस बात भगवान में आकर सपने में कही कि मुझे बाहर से यहां से निकालो और गोवर्धन में मेरी स्थापना करो, क्योंकि भगवान जब इस जगत से अप्रकट हुए थे तो वृंदावन में कोई भी चीज नहीं शेष रही थी, क्योंकि भगवान सारे ब्रजवासियों को अपने धाम ले गए अपने साथ वापस। तो वृंदावन में कोई भी चीज नहीं थी, कई साल बीत गए। तो वृंदावन में केवल तीन चीजें थी, एक गोवर्धन था, एक यमुना थी और एक भगवान के वृंदावन की जो रज है जो आज हम प्राप्त करते हैं, तीनों ही चीजें थी। तो जब राजा परीक्षित बने युधिष्ठिर महाराज के बाद इस भारतवर्ष के राजा, तो उन्होंने वृंदावन का स्मरण हुआ आया तो उन्होंने देखा कि ये तो स्थान उजाड़ गया है। तो उन्होंने भगवान के जो प्रपौत्र बचे थे वज्रनाभ, हाँ उनको राजा बनाया उस स्थान का। तो वज्रनाभ और उत्तरा भी थी जो अभिमन्यु की पत्नी है और परीक्षित महाराज की जो माता है। तो उस समय वज्रनाभ ने सोचा कि मैं क्या करूं, भगवान की लीला कहाँ कहाँ हुई है वृंदावन में, तो कोई स्थानों का पता नहीं चल रहा था। तो वज्रनाभ एक दिन यमुना के किनारे बैठते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान उनके हृदय में स्फुरित होकर कहते हैं कि मेरे उन लीला स्थलियों में आप विग्रहों की स्थापना करो। तो वज्रनाभ ने 16 विग्रहों की स्थापना की थी, उनमें से 3 विग्रह प्रमुख थे। एक थे श्री श्री राधा मदन मोहन, दूसरे थे गोविंदे और तीसरे थे गोपीनाथ। तो वृंदावन में आप जाओगे तो इन 3 विग्रहों के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज वो विग्रह जयपुर में है। तो जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है। तो माधवेंद्रपुरी को भगवान ने इस प्रकार से सपने में आदेश दिया तो माधवेंद्रपुरी जैसे उठ गए, सुबह के समय कई सारे ब्रजवासियों को एकत्रित किया और जो खोदने वाला जमीन खोदने वाला सामान है सारे ब्रजवासियों ने उस झाड़ियों के बीच गए और उसको खोदा तो उनको बहुत ही सुंदर जमीन के अंदर से विग्रह मिले जिनका नाम था श्री गोपाल। तो फिर वर्णन आता है कि कई सारे भक्तों ने, इतने हेवी थे वो गोपाल, इतने शक्तिशाली थे कि कई सारे बलिष्ठ लोग उनको उठाने में लगे। उन्होंने उठाया और गिरिराज के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर जाकर उनकी स्थापना की। और उस समय तो कोई मंदिर नहीं था, तो उस समय माधवेंद्रपुरी ने एक बहुत बड़ा सा पत्थर नीचे रखा, उसके ऊपर गोपाल को बिठाया और पीछे भी एक बड़ा सा पत्थर रखा और भगवान, बस ये उनका सिंहासन था। और कृष्ण बहुत आनंद में थे, लेकिन कृष्ण ने कहा था कि बहुत सालों से मैं इसके नीचे हूँ जमीन के अंदर, तो निकालो मुझे, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे बहुत स्नान कराओ। हाँ, तो माधवेंद्रपुरी जैसे उनकी स्थापना करते हैं गोवर्धन के ऊपर, और कई प्रकार के 200 घड़े जल लाते हैं गोविंद कुंड से, और उससे गोपाल को स्नान कराते हैं और तेल से उनकी मालिश की जाती है। 900 घड़े जल लाया गया था। तो इस प्रकार से उनका पंचगव्य से, पंचामृत से, कई चीज़ों से माधवेंद्रपुरी ने अभिषेक किया, उनकी मसाज की उनके लिए। फिर अन्नकूट जो फेस्टिवल है वो मनाया। तो सब जगह जब लोगों को पता चला कि गोपाल पुनः गिरिराज के ऊपर अवतरित हुए हैं, तो वृंदावन के सारे जो ग्वाल बाल हैं या ब्रजवासी हैं, क्योंकि ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो भगवान के लिए स्वाभाविक है, जैसे हमारा भगवान के लिए कोई प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम तो भौतिक चीज़ों के लिए है, शहर के वस्तुओं के लिए है, घर के पारिवारिक लोगों के प्रति है, कार के लिए है, कई चीज़ों के लिए हमारा प्रेम है। लेकिन वृंदावन वासियों का प्रेम कृष्ण के लिए स्वाभाविक है, जिस प्रकार से एक नदी समंदर की ओर स्वाभाविक तीव्रता से बहती है, तो उसी प्रकार से उन सबका हृदय कृष्ण के लिए बहता था। तो वो सब लोग जितनी भी सामग्री घर में थी, अन्न भोजन बनाने की, सारे हर कोई अपने बैलगाड़ी में भर भर के वो सारा सामान ले जाते हैं, और वहाँ गोपाल के लिए बहुत बड़ी बहुत सारे भोग तैयार करते हैं। कितने प्रकार की तरकारियाँ बनाई गई थी, कितने प्रकार के चावल बनाए गए थे, कितने प्रकार के स्वीट्स बनाए गए थे, कितने प्रकार की चपातियाँ, चपातियों का ढेर लगाया गया था। तो ऐसे कई नाना प्रकार के व्यंजन जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में करते हैं, और वो कहते हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी चीज़ें भगवान गोपाल के लिए बनाई थी। तो गोपाल को वो सब माधवेंद्रपुरी बहुत ही विनम्रता से वो सब चीज़ें अर्पित करते हैं, और माधवेंद्रपुरी पर्सनली दिन रात गोपाल की सेवा करते हैं। और मथुरा से कई लोग जो धनी लोग थे, गोपाल की सेवा के लिए कोई बेड देते हैं, तो कई लोगों ने कई सारे बड़े बड़े बर्तन दिए। और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वृंदावन के और मथुरा के सारे लोगों ने, हर एक व्यक्ति ने एक एक गाय दान कर दी गोपाल की सेवा के लिए। तो कहते हैं कि इतनी गव्य हो गई, बहुत सारी गायें गोपाल की हो गई। तो इस प्रकार से ये देखा जाता है कि किस प्रकार से वृंदावन के लोग भगवान की सेवा के लिए तत्पर है। तो भक्त का मतलब है कि वृंदावन की भावना उसके अंदर होती है, वो वृंदावन के भक्तों के जैसे ही सेवा में लगा रहता है और भगवान को प्रसन्न करने की उसकी भावना होती है। तो इस प्रकार से मथुरा के किसी एक व्यक्ति ने मंदिर बनवाया गोपाल के लिए। तो आज आप जाते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने, तो अन्योर नाम का गांव आता है, तो वहां से आप देखेंगे कि एक सफेद सा मंदिर गिरिराज के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आजकल वो मंदिर खाली है, क्योंकि गोपाल वहां नहीं है। गोपाल कहाँ चले गए हैं? अभी नाथ द्वारा गए हैं, गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर है नाथ द्वारा, यही गोपाल जो माधवेंद्रपुरी के लिए अवतरित हुए थे वृंदावन में, आज वो वहां है, वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो वैष्णव हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। तो गोपाल की सेवा बहुत अच्छी तरह से वहां भी हो रही है, विशेष रूप से उनका जो वस्त्रों का श्रृंगार है, ऐसा वस्त्रों का श्रृंगार कहाँ भी नहीं होता जैसा श्रीनाथ जी का होता है नाथ द्वारा में। तो यही वो गोपाल हैं जहाँ जो माधवेंद्रपुरी से सेवा लेने के लिए अवतरित हुए हैं। और उनकी सेवा राजा के समान श्रीपाद माधवेंद्र पुरी करते थे और स्वयं करते थे। जैसे आजकल आप देखते हैं कि धनी लोग अपने घर में विग्रह रखते हैं राधा कृष्ण के, लेकिन कभी भी उनकी सेवा नहीं करते खुद। वो कुत्ते की सेवा करने के लिए तैयार है, कुत्ते को घुमाने ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करेंगे। घर में भी उन्होंने रखे होंगे विग्रह, लेकिन किसी पुजारी को तनख्वाह देकर रखेंगे और वो सेवा करता रहेगा। तो प्रभुपाद इस बात की निंदा करते थे और हर समय माधवेंद्रपुरी का उदाहरण देते थे और कहते थे कि देखो माधवेंद्रपुरी स्वयं ही भगवान की पर्सनली अपने हाथों से, अपने शरीर से, मन से, वाणी से उनकी सेवा किया करते थे। तो ऐसे कई दिन बीते, 2 साल हो गए और फिर माधवेंद्रपुरी ने के पास बंगाल से 2 ब्राह्मण आए जिनको माधवेंद्रपुरी ने इनकी सेवा में लगाया। और आज भी आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो एक गांव आता है जतिपुरा। तो जतिपुरा क्या है, जहाँ माधवेंद्रपुरी निवास करते थे। जति मीन्स यति मीन्स सन्यासी। तो जो ये माधवेंद्रपुरी के कारण उस गांव का नाम जतिपुरा है, यतिपुरा है। तो जब 2 साल हो गए, माधवेंद्रपुरी ने बंगाल से जो 2 बहुत ही गंभीर सीरियस ब्राह्मण आए थे भक्त, उन दोनों को भी ट्रेन किया, सिखाया गोपाल की सेवा। तो माधवेंद्रपुरी ने इतना बड़ा फेस्टिवल अरेंज किया था, कई प्रकार के व्यंजन बनाए थे और हर रोज अलग अलग गांव के लोग आते थे और गोपाल के लिए सारा धन धान्य देते थे और बहुत सारा भोग बनाते थे और गोपाल को अर्पित करते थे। तो ये सेवा भावना है। तो इस प्रकार से 2 साल हो गए और माधवेंद्रपुरी जब सो रहे थे तो माधवेंद्रपुरी को फिर से गोपाल सपने में आते हैं और गोपाल को क्या कहते हैं जो इस श्लोक में है। हाँ, कहते हैं गोपाल कहे पुरी आमार तापना है जाए, मलय जल चंदन लेप तबे से जुड़ाए। तो कहते हैं गोपाल कहते हैं कि है पुरी माधवपुरी, माधवेंद्रपुरी आमार तापना ही जाए, क्योंकि मैं कई सालों से जमीन के अंदर था। मुस्लिमों के भाई से पुजारी ने मुझे झाड़ियों के बीच में जमीन के अंदर रखा था, तो मुझे अंदर इतनी गर्मी हो गई है। तो लेकिन आपने मुझे 900 घड़ों से स्नान तैयार कराया, जल से कई प्रकार से अभिषेक किया, सुगंधित तेल से मेरा मालिश किया, इस प्रकार से आपने बहुत सेवा की है, लेकिन फिर भी मेरे शरीर का ताप गर्मी अभी नहीं जा रही है। आप क्या करो मेरे लिए, मलय जो चंदन ले, मलय हिल जाओ। जैसे मलय मलेशिया, जो मलेशिया में बहुत चंदन होता था वैदिक सभ्यता में, प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल मलेशिया में चंदन नहीं होता, वो लोग रबर के जो पेड़ है वो लगा रहे हैं टायर्स वगैरह बनाने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से कहते हैं कि संस्कृति का लोप हो रहा है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं। तो भगवान उनको ये आज्ञा देते हैं कि आप जाओ और पूर्व की ओर, जगन्नाथपुरी की ओर, ओडिशा। आप देखो उत्तर प्रदेश, वृंदावन से ओडिशा जाना जगन्नाथपुरी, और वहां से मेरे लिए चंदन लेके आना और वो चंदन को घिसना और मेरे शरीर में लेप दे देना, क्योंकि चंदन बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है। तो ये गर्मी के दिन थे। तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन से स्वयं ही चल के जाते हैं। अभी तो हम ट्रेन में बैठते हैं तो 40 घंटे में पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी में, या फ्लाइट से बैठते हैं तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी ने ये नहीं सोचा कि ये भगवान क्या कह रहे हो, मैं तो अभी, और वो बहुत 90 साल के थे जब वो चले गए माधवेंद्रपुरी, और उन्होंने नहीं सोचा कि ये इतना कष्ट में क्यों लूं भगवान की सेवा के लिए। लेकिन नहीं, भक्त का स्वभाव क्या है, हाँ, भगवान की सेवा के लिए वो किसी भी प्रकार का कष्ट सहन करने के लिए तत्पर होता है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हारा सेवाय दुख है जग से ही तो परम सुख, कि हे कृष्ण आपकी सेवा करने में मेरे जीवन में कितना ही दुख आता है तो वो दुख मुझे दुख नहीं महसूस होता, मुझे क्या महसूस होता है, सुख। हाँ, क्योंकि भगवान की सेवा में जो दुख आता है वो दुख नहीं है। भौतिक जगत में लोग परिवार का पालन पोषण करने के लिए कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, गधे के जैसे काम कर रहे हैं और नाना प्रकार के कष्ट उनके ऊपर आ रहे हैं, और वो सुबह उठते उनकी इच्छा नहीं होती ऑफिस जाने की। किसी की इच्छा होती है सुबह उठते ऑफिस में जाओ काम करो, नहीं, क्योंकि इतना कष्ट है और ऐसे कष्ट में उनको आनंद नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेशन और अधिक दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवत सेवा क्या है, उससे अलग है। भगवान की सेवा जो करता है उस सेवा में दुख भी मिलता है, तो वो दुख आनंद को बढ़ाता है। और इतना आनंद, चैतन्य महाप्रभु कहते आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, कि हर पल पल में वो आनंद का आस्वादन करता है और वो आनंद सागर की भांति बढ़ता है। तो माधवेंद्रपुरी निकले ओडिशा की ओर और पैदल चल के गए भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा था मेरे लिए चंदन ले आओ। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी का जीवन बहुत ही शिक्षाप्रद है। और श्रील प्रभुपाद का जीवन भी आप देखेंगे कि 70 साल की आयु में भगवान की सेवा के लिए अमेरिका चले गए, जिनके पास ना खाने का ठिकाना है ना रहने का ठिकाना, जेब में केवल 40 रुपए थे। तो इस प्रकार से जो भक्त है वो भगवान के लिए बहुत ही अधिक प्रयास करता है, उस लगा रहता है भगवान की सेवा में, और वही सेवा उसे आनंद देती है। इस भौतिक जगत में हम किसी की भी सेवा करेंगे तो हम उस सेवा से आनंदित नहीं होंगे, दुखी हो जाएंगे। लेकिन यदि हम गंभीरता से भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं तो वो सेवा हमें आनंद प्रदान करती है। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी चले जाते हैं ओडिशा की ओर। और जब वो ओडिशा जाते हैं तो पहले नवदीप होकर जाते हैं, शांतिपुर जाते हैं अद्वैत आचार्य के यहाँ। और अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। तो जो अद्वैत आचार्य हैं वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। और वहाँ से फिर ओडिशा की ओर पदार्पण करते हैं माधवेंद्रपुरी, और इस रेमुना नाम के गाँव में पहुँचते हैं। रेमुना पहुंचते तो रेमुना में कौन है, गोपीनाथ के विग्रह है। तो ये रेमुना बहुत ही विशेष स्थान है, आप भी कभी जब जाते हैं ओडिशा तो ये रेमुना जरूर जाइए। बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। जब आप यहाँ से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ते हैं जगन्नाथपुरी के लिए, तो बीच में ही ये बालेश्वर स्टेशन आता है, और उस स्टेशन के 7 किलोमीटर दूरी पर ही ये गोपीनाथ जी हैं, जहाँ ये चैतन्य चरितमृत में जिनका वर्णन आता है, जिनका दर्शन करने के लिए हमारे सारे महान महान आचार्य गए हैं। चैतन्य महाप्रभु गए हैं, नित्यानंद प्रभु गए हैं, श्रीनिवास आचार्य गए हैं, तो ऐसे महान महान वैष्णव गए हैं। तो उनका दर्शन करने के लिए माधवेंद्रपुरी वहां पहुंचे। तो ये रेमुना माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ का दर्शन किया और बहुत आनंदित हो गए। तो उस स्थान का नाम रेमुना है। तो रेमुना क्यों पड़ा, क्योंकि वो बहुत रमणीय स्थान है। और वहाँ जो गोपीनाथ है वो तो विशेष है। ये गोपीनाथ विग्रह के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास में थे सीता और लक्ष्मण के साथ, तो एक स्थान में बैठे थे, तो भगवान राम ने सामने से दूर से जाते हुए देखा कुछ ग्वाल जा रहे हैं। चित्रकूट में जब वो रह रहे थे तो वो कुछ ग्वाल लोग जा रहे हैं गौओं को चराते हुए। तो भगवान राम सीता के साथ थे, तो वो देखकर उनको बहुत उनके हृदय विदीर्ण हो गया। राम की आंखों में आंसू आने लगे। उनको स्मरण होने लगा कि मैं अभी कृष्ण के रूप में इस प्रकार की लीलाएं करने वाला हूँ। तो उनका वो कृष्ण लीला का स्मरण हो आया भगवान राम को। जब सीता जी ने पूछा कि आपको आप क्यों इस प्रकार से रो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी उस दिव्य लीला का स्मरण कर रहा था, और इस कारण से मुझे इस प्रकार के भाव मेरे हृदय में प्रकट हो रहे हैं। तो सीता जी कहते कि आप कौन से रूप में ये करेंगे, अपने आप को प्रकट करेंगे, तो भगवान के द्वारा अपने स्वयं रूप में कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा। और सीता जी इच्छा करती है कि मैं उस रूप की उपासना करना चाहती हूँ, मैं उनकी सेवा करनी चाहती हूँ उस रूप में आपके उस। तो फिर भगवान राम अपने बाणों से ये विग्रह बनाते हैं गोपीनाथ का, और इतना सुंदर वह गोपीनाथ का विग्रह आप जाते तो देखेंगे, तो बहुत ही सुंदर है। और वो भगवान राम सीता को देते और सीता उसकी पूजा कर रहे थे। तो आगे चलकर जब ओडिशा के राजा लांगुड़ा नरसिंह देव जब जाते हैं उस एरिया में और इनवाइट करने के लिए बाकी राजाओं को, क्योंकि उन्होंने कोणार्क का मंदिर बनाया था और उसका ओपनिंग था, तो कई राजाओं को इनवाइट करने के लिए जाते हैं, तो ये गोपीनाथ को अपने साथ ले आते हैं। तो गोपीनाथ को अपने साथ लाते हैं हाथी पालकी और सारे सेनाओं के साथ। तो जब ये बीच में इस बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जहां ये स्थान था, तो गोपीनाथ जब राजा सोता है तो गोपीनाथ कहते हैं कि मुझे इसी स्थान में रहना है। हाँ, क्योंकि वो बहुत रमणीय स्थान था, सब जगह नारियल के पेड़ हैं, तालाब है, वृक्ष है, बहुत सुंदर स्थान है। तो गोपीनाथ राजा को कहते कि मुझे यहाँ रहना है, मैं आगे नहीं आऊँगा जगन्नाथपुरी। तो फिर गोपीनाथ वहाँ निवास करते हैं और राजा उनके लिए मंदिर बनवाता है। तो इस प्रकार से गोपीनाथ वहाँ निवास करते हैं जहाँ अभी माधवेंद्रपुरी पहुँचे थे। तो भक्त जहाँ भी जाता है, जिस स्थान में जाता है, उसका स्वभाव होता है कुछ ना कुछ सीखता है कि मैं वापस जाऊँगा अपने स्थान में तो मैं भगवान की सेवा उस प्रकार से करूँगा। जैसे लोग मंदिर में आते हैं तो सीख के जाना चाहिए या सीखते हैं और घर में जाके उस प्रकार की सेवा करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी ने जब गोपीनाथ का दर्शन किया तो पूछा कि क्या क्या भोग लागे, कि पुजारी को पूछा कि ये गोपीनाथ को क्या क्या भोग लगता है। तो उन्होंने बहुत वर्णन किया और एक चीज बताए कि अमृत केले नाम का जो खीर है, स्वीट राइस है, वो बहुत विशेष है, सारे त्रिभुवन में प्रसिद्ध है, फेमस है, वो गोपीनाथ को भोग लगता है और बहुत ही स्वीट है, मधुर है वो स्वीट राइस, जिसका नाम अमृत केली है। अमृत में कि वो अमृत के समान स्वादिष्ट है वो खीर, ऐसी खीर गोपीनाथ को अर्पण होती है। तो माधवेंद्रपुरी के हृदय में ये इच्छा आई कि यदि, क्योंकि वो मांगते नहीं थे किसी से, खाने के लिए भी नहीं मांगते थे, ये स्वभाव था उनको, अयाचित वृत्ति, जैसे अजगर है, अजगर माँ कुछ नहीं, वो बैठा रहता है, जैसे उसके पास खाने के लिए चीज़ आ गई तो उसको खा लेगा और एक जगह बैठेगा, या तो पेड़ के ऊपर होता है अजगर, कई बार बड़े बड़े कोई जा रहा है नीचे से प्राणी तो ऊपर से जंप लगाएगा, उसको खा लेगा और वहाँ ही बैठेगा। और यदि उसने खा लिया है, पेट भरा है, और आप उसके पास जाओगे और कहोगे कि मुझे भी खा लो, तो कहेगा नहीं। हाँ, तो ये आयाचित वृत्ति है, बिना मांगे। तो आज अजागर वृत्ति, तो इन्होंने सोचा कि मैं अभी मांगूंगा नहीं, लेकिन इन्होंने ये इच्छा प्रकट की क्या कि मुझे मिल जाए बिना मांगे गोपीनाथ की ये खीर मिल जाए, ताकि क्या स्वाद है मैं अनुभव करूँ, आस्वादन करूँ। अब जब मैं वृंदावन वापस जाऊंगा और मेरे जो गोपाल होंगे उनके लिए भी वैसे ही खीर मैं बनाऊंगा। तो इस प्रकार से भक्त सीखता है और उस चीज से भगवान की सेवा को और जोर से बढ़ाता है। तो जब माधवेंद्रपुरी ने ये इच्छा प्रकट की तो उसी समय खीर के 12 पात्र, 12 बड़े बड़े मटके भगवान को भोग लगते हैं आज भी। तो वो पुजारी भोग लगा ही रहा था तो इनके हृदय में इच्छा आई कि देखो मैं कितना पापी व्यक्ति हूँ, अपराधी हूँ, कि भगवान का भी भोग लगा ही नहीं और पहले मैंने खाने की इच्छा प्रकट की। हाँ, इस प्रकार से उन्होंने सोचा कितना मैं अपराधी हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं आसुर हूँ। तो ये भावना से वो उन्होंने फिर वो स्थान छोड़ दिया और बाहर गए मार्केट प्लेस में जाकर वहाँ वो कीर्तन करने लगे जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एकांत में वो कीर्तन करने लगे तो यहाँ भोग लगाया पुजारी ने और मंदिर बंद कर दिया और पुजारी सोने लगा। हाँ, सो गया जाकर। तो जैसे पुजारी सो गया तो भगवान गोपीनाथ उनके सपने में आए पुजारी के और उसने उन्होंने कहा कि हे पुजारी उठो, तुमने मुझे तो 12 जो खीर के मटके हो भोग लगाए थे, लेकिन तुमने जब उठाया भोग वापस तो तुमने 11 ही मटके उठाए हैं और एक मटका मैंने मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए मेरे जो कपड़े हैं, जैसे जगन्नाथ जी ने वस्त्र धारण किए पर्दा है, उसके पीछे मैंने छुपा के रखा है। तो तुम उठो और ये जो एक बर्तन है खीर का ये लेके जाओ माधवेंद्रपुरी को। हाँ, जो भार है। जैसे पुजारी उठता है तो सबसे पहले स्नान करता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे मैंने ये गलती कैसे की कि मैं रोज 12 पॉट भगवान को अर्पण करता हूँ और आज मैंने 11 ही कैसे उठाए। तो भगवान ने कहा था कि मैंने ये तुम्हें भ्रम में डाला था। तो गया देखा भगवान के कपड़ों को, साइड को किया पर्दे को, देखा एक वहाँ खीर का पॉट है। पुजारी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और पुजारी कितना आनंदित हो जाता है, अपने हाथ में उस पात्र को लेकर दौड़ने लगता है बाहर मार्केट प्लेस में और कहता है माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी? हाँ, जिनके लिए आपके लिए कृष्ण ने इस खीर की चोरी की है, आप बहुत भाग्यवान हो। तो पूरे मार्केट में ऐसे आवाज करते हुए जा रहा है। तो फिर आगे जाकर माधवेंद्रपुरी एकांत में भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी ने उस आवाज को सुना तो बड़े विनम्रता से कहा कि मैं ही माधवेंद्रपुरी हूं। तो फिर वो जाकर सबसे पहले वो कहता है, देखो आप कितने भाग्यवान हो कि साक्षात गोपीनाथ ने आपके लिए खीर की चोरी की है। और उनको वो पकड़ाते हैं और पहले वो पुजारी उनको प्रणाम करता है, उनके चरण छूता है और कहता है कि आप सामान्य भक्त नहीं हो, क्योंकि गोपीनाथ जिनके लिए चोरी करें वो कोई सामान्य थोड़ी हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्त से कितना अधिक प्रेम रखते हैं, कितना अधिक लगाव रखते हैं। तो यही है, जीवन में हमें कुछ बनना है तो भगवान का भक्त बनना चाहिए। क्योंकि संसार में चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, इस संसार में कुछ भी बन जाओ, लेकिन आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म लेना पड़ेगा, पुनः मरना पड़ेगा, पुनः माँ के गर्भ में जाके सड़ना पड़ेगा। तो ये जीवन हमारे लिए नहीं है। तो हमें बनना ही है तो जीवन में ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे भगवान का भक्त बनना है, महान शुद्ध भक्त बनना है। तो इसलिए भगवान की भक्ति को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और इस भक्ति का विज्ञान भगवान और उनके भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने समझाया है कैसे आप महान भक्त बन सकते हो। तो फिर किसी और चीज की चिंता ही नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी ने उस चीज को स्वीकार किया, उस खीर को बहुत ही आनंद के साथ पा लिया। और इतना ही नहीं कि जो मटका था मिट्टी का, उसके भी टुकड़े करके अपने इस वस्त्र में उन्होंने बांध दिया और वो मिट्टी का पूरा बर्तन वो खाने लगे, पूरा खा लिया। और उन्होंने सोचा कि मैं अभी यहाँ रेमुना में इस स्थान में रहूंगा तो फिर सारे जगह में फेमस हो जाऊंगा, कहेंगे कि देखो ये कितना बड़ा भक्त है, इनके लिए तो भगवान ने खीर की चोरी की है। तो भक्त का स्वभाव क्या होता है, प्रणादपि समीचेन, वो अपना यश नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, वो नहीं चाहता मान सम्मान प्रतिष्ठा। क्योंकि भक्त सोचता है प्रतिष्ठा क्या है, प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, जो मल खाने वाला सुअर है और जब वो मल त्यागता है तो उसकी तुलना प्रतिष्ठा से की है, मान और सम्मान से की है। तो भक्त सोचता है कि मुझे नहीं चाहिए इस प्रकार का मान सम्मान, वो सोचने लगे इस गांव में सारा लोग मेरा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे। तो वो सोचते रात के रात वो भाग चले गए कि अभी जगन्नाथपुरी जाता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे आज्ञा दी थी कि मेरे लिए चंदन ले आना गोपाल ने वृंदावन से, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी हुई है और चंदन का मुझे लेप लगाना उसको घिस के। तो ये जब जाते जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो पहुंचने से पहले ही इनके बारे में उनका यश पहले ही पहुंचा था जगन्नाथपुरी में कि माधवेंद्रपुरी नाम के भक्त के लिए भगवान ने चोरी की थी। तो वहां भी सारे लोग उनका सम्मान करते और पूछते कि क्या सेवा करो। तो माधवेंद्रपुरी कहते कि मुझे तो भगवान ने आदेश दिया था कि उनके लिए चंदन चाहिए। तो उससे इस समय चंदन प्राप्त करना बहुत कठिन था, क्योंकि मुस्लिमों का शासन था और सारा राज्य के राजा के अधीन होता था सारा चंदन। तो फिर कुछ ऐसे महान भक्तों ने राजा को रिक्वेस्ट करके माधवेंद्रपुरी के लिए कई मन चंदन उनको प्रदान किया, चंदन दिया, उसके साथ कर्पूर दिया और एक लेटर भी दिया ताकि रास्ते में उनको वृंदावन की ओर जाते समय, क्योंकि बहुत जगह टैक्स देना पड़ता था तो टैक्स देना ना पड़े, क्योंकि उस समय नॉर्मल व्यक्ति चंदन वगैरह अपने साथ नहीं लेके जा सकता इतना, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो लेकिन माधवेंद्रपुरी की ये भगवान की योजना थी कि माधवेंद्रपुरी को भक्तों के द्वारा सहायता मिले। और फिर माधवेंद्रपुरी के साथ दो लोग भी देते हैं ब्राह्मण कि जो उनके साथ इस भार को ले जा सकते हैं। तो फिर माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी से वापस आते हैं वो सारे चंदन वगैरह लेकर, और रास्ते में फिर से वो रेमुना आते हैं जहां गोपीनाथ ने उनके लिए खीर की चोरी की थी। अभी तो वो पता चल गया था सबको कि ये बहुत महान भक्त है, तो पुजारी तुरंत आए उनके लिए माला लेकर, उनके लिए खीर लेके। तो वहां माधवेंद्रपुरी रहे और जब ये समय था
जैसे आज का दिन है तो कल की रात में माधवेंद्रपुरी जब सो रहे थे तो भगवान गोपाल जो वृंदावन में अवतरित हुए थे उनके लिए, उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए, तो गोपाल उनके सपने में फिर से आए और गोपाल सपने में आकर उनको कहते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी, तुम्हारे लिए ये जो चंदन वृंदावन ले आना बहुत ही कठिन होगा। हाँ, तुम क्या करो, जो चंदन तुमने जगन्नाथपुरी से लाया है उसको यहाँ घिसो और मेरे शरीर में, गोपीनाथ के शरीर में इसका लेप करो, क्योंकि मैं वृंदावन में गोपाल के विग्रह के रूप में हूँ और मैं यहाँ गोपीनाथ के रूप में हूँ, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, तुम गोपीनाथ को चंदन अर्पित करोगे तो वो मेरी ही सेवा है, मुझे ही चंदन अर्पित होगा, तो तुम मुझे कल से ये चंदन का लेप दे दो। तो आज के दिन से माधवेंद्रपुरी ने फिर माधवेंद्रपुरी ने और लोगों को इकट्ठा किया, करवाया और पुजारी को कहा कि उनको हम पे करेंगे, उनको चंदन घिसने में लगाओ। तो बहुत लोगों ने चंदन घिसा और फिर जब चंदन घिसा और वो भगवान के शरीर में, गोपीनाथ के शरीर में अर्पित किया, तो 21 दिन तक वो चंदन अर्पित हो रहा था। तो इतना चंदन माधवेंद्रपुरी ने भगवान के लिए लाया था, गोपाल के लिए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मंदिर आते हैं और ये जो चंदन यात्रा आज से शुरू है सब मंदिरों में, इस्कॉन के तो सारे मंदिरों में पूरे वर्ल्ड वाइड आज से भगवान को चंदन अर्पित किया जाएगा। ईस्ट ऑफ कैलाश में भी आज शाम को 4:15 बजे दर्शन है, भगवान के पूरे सारे विग्रह को चंदन अर्पित किया जाएगा। और ये 21 दिन तक ये चंदन यात्रा चलती है, क्योंकि आप भी देखेंगे आप कितना गर्मी है, लोग गाड़ी में बैठते तो एसी ऑन किए बिना नहीं रह पाते। तो भगवान इस प्रकार से ये चंदन की सेवा अपने भक्त श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से स्वीकार करते हैं। और आप भी जैसे यहाँ चंदन घिसने की सेवाएं हैं तो ये बहुत लाभदायक है अपनी प्रेम को भगवान के प्रति प्रदर्शित करने के लिए कि स्वयं हम चंदन घिसें, क्योंकि जितना चंदन को घिसेंगे उतना ही हमारे हृदय का घर्षण होगा, उतना ही हृदय साफ होगा और उतना ही भगवान के प्रति प्रेम होगा, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में जल रहे हैं। इसलिए तो सुबह उठते ही हम गाते हैं संसार दावा लेडल होगा, कि ये जगत दावाग्नि के समान है जो जल रहा है। सारे लोग तप रहे हैं, जैसे किसी तवे के ऊपर आप फ्राई करते हो किसी चीज को, तो दिल्ली में तो हर कोई फ्राई हो रहा है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में हो, हर कोई तप रहा है। तो ये तपने वाली स्थिति के लिए एक ही उपाय है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। इस भौतिक जगत के कष्टों से छुटकारा प्राप्त करना है तो भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथा को सुनना और भगवान की सेवा में लगना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये माधवेंद्रपुरी बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं जिनके चरित्र से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को भगवान की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए, किस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए सब प्रकार के कष्टों को झेलने के लिए उसको तैयार होना चाहिए। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी रेमुना में रहे और फिर जगन्नाथपुरी गए चातुर्मास के लिए और फिर वापस रेमुना में आकर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, तो उस स्थान में आज भी उनका समाधि है। तो माधवेंद्रपुरी हमारे जो गौड़िया संप्रदाय है उसके एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं, महत्वपूर्ण अंग है कि भगवान के प्रति इतना प्रेम था। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, उनका इतना प्रेम था कि महाप्रभु कहते हैं, प्रगाढ़ प्रेम रहय स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। कि किसी का भगवान के प्रति प्रेम है तो वो कैसे प्रकट होगा। आजकल तो बहुत सहजिया लोग हैं, वो अलग प्रकार से नाचते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, स्त्रियों जैसा साड़ी धारण करेंगे। वृंदावन में आप जाते हैं और लोग कहेंगे कि हम तो भगवान के लिए पागल हैं, लेकिन भगवान के लिए पागल है इसको कैसे जानेंगे, इतना भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किसी का भगवान में प्रेम है जैसे किसी का अपने पत्नी के प्रति प्रेम है या किसी पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम है, तो वो प्रेम ये नहीं है कि पति दिन भर ऑफिस में चला जाता है और पत्नी घर में एक चेयर लेके जब वो आता है तो घर के दरवाजे में चेयर लेके बैठती है और आते ही उसको आई लव यू कहते रहती है। और वो बेचारा आया है काम करके पूरा धूप में इसमें उसमें कष्ट प्राप्त करके, और घर आया उसके लिए ना खाने के लिए है, वो खुद ही आकर कुकिंग कर रहा है, खुद ही आकर कपड़े धो रहा है, खुद ही आकर रूम सफाई कर रहा है, तो ये पत्नी का प्रेम होगा नहीं। तो पत्नी का प्रेम है मीन्स क्या, कि पत्नी इतना सारा वातावरण वंडरफुल बना देती है, उसके आते थे उसके लिए जल है, उसके लिए भोजन है, उसके कपड़े तैयार है, हाँ सब कुछ। तो ये प्रेम का प्रदर्शन है, सेवा का भावना। तो भगवान के प्रति प्रेम है तो वो प्रकट होता है सेवा के द्वारा। तो हम कितनी रूप से भगवान की सेवा में हम लगे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी सम भाग्यवान जगते नाही आर। देखो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त का वर्णन कर रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी के समान इस जगत में कोई भाग्यवान व्यक्ति नहीं है। हाँ, उनका भाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि क्या भाग्य है। दुग्धदा न चले कृष्ण जारे देखा दिला, तीन बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैला। कि स्वयं भगवान जिसके लिए दूध लेकर आए हैं और स्वयं तीन बार भगवान सपने में आकर उनको सेवा का आदेश दिया। जार प्रेमे वशहया प्रकट हैला, सेवा अंगीकार करे जगत तारिला। कि ऐसे माधवेंद्रपुरी के प्रेम में वश होकर जो गोपाल है कृष्ण है वो प्रकट हो गए और प्रकट होकर सारे जगत को उन्होंने तार दिया। जार लागी गोपीनाथ क्षीर कैल चोरी, आतएव नाम है क्षीर चोरा हरे। अब जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर के चोरे किए हैं और जिनके कारण गोपीनाथ का नाम क्या हुआ, खीर चोरा गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ के श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के। तो आगे कहते हैं कि इतना कृपा भगवान ने किया है तो भगवान की यहाँ भक्त वत्सलता नजर आती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महादयामय प्रभु भगत वत्सल, चंदन परि भक्त सम करे लसफल। कि कहते हैं कि इतना प्रेम भगवान का था या जगन्नाथ इनका माधवेंद्रपुरी का कि उन्होंने इतना कष्ट उठाया, उस कष्ट को आदान प्रदान करने के लिए भगवान गोपीनाथ ने उस चीज को स्वीकार किया, चंदन को स्वीकार किया। तो ये चंदन यात्रा आज से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे माधवेंद्रपुरी कैसे हैं, परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन। कि परम विरक्त माधवेंद्रपुरी विरक्त थे और मौनी थे, मौनी मतलब कृष्ण के अलावा किसी चीज की चर्चा वो नहीं करते थे, इसलिए वो अकेले ट्रैवल करते थे क्योंकि वो सोचते थे किसी और को मेरे साथ रखूंगा तो कृष्ण के अलावा बातें करेगा, प्रजल्प करेगा, तो कहते इस भय से वो किसी और को अपने साथ नहीं रखते थे। तो ये स्वभाव है भक्त का, तो बोलना है तो भगवान के बारे में वो बोलता है। और विशेष वर्णन चैतन्य महाप्रभु उनका करते हैं कि अंतिम समय में उन्होंने जब अपना शरीर छोड़ना था तो उस समय में उन्होंने कृष्ण के प्रति जो माधुर्य प्रेम है उसको प्रकट किया। तो हमारे ये जो परंपरा है ये मध्वाचार्य की परंपरा में हम आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़िया एक अलग वे होता है जो माधवेंद्रपुरी से शुरू हुआ था, ये जो एक प्रकार से संप्रदाय। तो माधवेंद्रपुरी ने इस मध्वाचार्य के संप्रदाय में सबसे पहले कृष्ण प्रेम के जो लक्षण हैं, भाव के जो लक्षण हैं वो प्रकट किए थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि माधवेंद्रपुरी जय श्री माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्पतरु तेहो प्रथम अंकुर। कि भक्ति कल्पतरु के ये प्रथम अंकुर है और ईश्वरपुरी वो अंकुरित हुआ एक बीज है और चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रेमा भक्ति के वृक्ष हैं और उन्होंने सारे जगत को फल बांटे। तो इन्होंने इस चीज की शिक्षा प्रदान की अपने आचरण से माधवेंद्र पुरी ने कि किस प्रकार से भगवान के प्रति विरह प्रकट किया जाए। तो माधवेंद्र पुरी अपने अंतिम समय में एक श्लोक का उच्चारण किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये श्लोक केवल राधा रानी उच्चारण करते थे और ये श्लोक को केवल तीन लोग जानते थे, एक थे चैतन्य महाप्रभु, दूसरे थे माधवेंद्र पुरी और तीसरे थे श्रीमती राधा रानी। तो ये श्लोक श्रीमती राधा रानी ने ही वर्णन उच्चारित किया था वृंदावन में भगवान कृष्ण के विरह में। तो जिस चीज से हमें सेपरेशन होता है, विरह होता है, उसका मतलब उस चीज से हमें बहुत अधिक प्रेम है। तो हमारे संप्रदाय का शिक्षा क्या है? विरह प्रेम भगवान के प्रति। ऐसे नहीं कि मैंने कृष्ण को देख लिया। आजकल के तो बहुत लोग कहते हैं रोज तो कृष्ण मेरे सपने में आते हैं, रोज मैं देखता हूँ कृष्ण को। नहीं, तो भगवान के प्रति प्रेम अधिक है तो वो कैसे महसूस होगा? विरह से। हमारे गोस्वामीगण कहा करते थे, हे राधे व्रज देव केच ललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्य कुतः। कि हे राधे, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, आप कहाँ हो? क्या आप गोवर्धन के तलहटी में हो या वृक्षों के नीचे हो? तो इस प्रकार से गोस्वामी पूरे वृंदावन में भ्रमण करते थे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कृष्ण को देखा। तो ये भक्त का महान विरह का लक्षण है। तो माधवेंद्र पुरी ने भी अपने अंतिम समय में इस विरह को प्रकट किया इस संप्रदाय में सबसे पहले। और माधवेंद्र पुरी ने कहा, उस श्लोक को बोलते थे, आये दीन दयाद्र नाथ हे मथुरानाथ, कदावलोकेशे हृदयम तदलोक कातरम दैत ब्राह्मीति किम करोमि हम। कि आये दीन दयाद्र नाथ, हे नाथ, हे बहुत दयालु कृष्ण, हे मथुरानाथ, हे मथुरा के नाथ, मेरा हृदय आपके विरह में जल रहा है, मैं क्या करूं? कब मुझे आप मेरे दृष्टि को गोचर होंगे, कब आप मुझे दिखाई देंगे? तो इस प्रकार से विरह की जो ये भावना है श्रील माधवेंद्र पुरी ने प्रकट की थी। और इसी कारण से ये अक्षय तृतीया हम मनाते हैं गौड़िया वैष्णव। और आज से ही इस चंदन यात्रा की शुरुआत हुई थी। 21 दिन के लिए भगवान ने माधवेंद्र पुरी के द्वारा चंदन को स्वीकार किया था। तो माधवेंद्र पुरी से हम सीख सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपसे आपका जो सेवा भावना है भगवान के लिए कितने तीव्र है, उसी प्रकार की जो सेवा की भावना है वो मेरे हृदय में भी उदित हो जाए, जो सर्विस एटीट्यूड है वो मेरे हृदय में जागृत हो जाए। जो देखो श्रील प्रभुपाद ने भी उसी सेवा भावना को प्रकट किया, इतना सारा कष्ट उठा के। प्रभुपाद तो वृंदावन में बहुत आराम से रह रहे थे राधा दामोदर मंदिर में, अपनी बूढ़ी आयु में उनको कोई आवश्यकता नहीं थी अमेरिका जाने की, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने की। लेकिन उनके गुरु का आदेश और कृष्ण की ये सबसे बड़ी सेवा समझकर वो गए और उन्होंने कृष्ण भावना का प्रचार किया और कई प्रकार के दुख झेले पर्सनली। उनको हार्ट अटैक आए जाते समय, आप पढ़ेंगे लीलामृत में तो आप अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी ने जिस प्रकार से सेवा की भावना को प्रकट किया भगवान गोपीनाथ के प्रति, तो उसी सेवा भावना को श्रील प्रभुपाद ने भी अपने दिव्य आचरण से और कार्यकलाप से सारे विश्व को दिखाया और सारे विश्व को लाभान्वित किया भगवान की सेवा प्रदान करके, और विशेष रूप से उनके भगवान के दिव्य नामों के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।